نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلام اے ٹو زی میں سے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اخلاق اے ٹو زی، اور اس میں سے بھی آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اخلاق حسنہ یا اخلاق فاضلہ. کیا ہے لفظ بولیے؟ فاضلہ. فاضلہ کیا؟ فاضل کیا؟ فضل کیا؟ فضل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، فاضل ایکسٹرا. جب ہم اللہ کا فضل مانگتے ہیں نا، تو اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری اوقات نہیں ہے تو اپنے پاس سے دے دے، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، تو دے دے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاق فاضلہ کیا؟ کہ وہ چیزیں جو انسان واقعی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے. اس میں ہم آج کریں گے رحم کو. رحم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کیوں ہے، اور قرآن کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین کیوں ہے، اور قرآن کی چار سورتوں کے شروع میں لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور الحمدللہ کے لفظ کے اوپر آپ جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو اس چیز کا یقین آ جائے گا کہ رب کی سب سے پسندیدہ خوبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اپنی چیز خود بڑی پسند ہے، وہ کیا ہے؟ کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے لکھ لیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو. اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے جو چیز پسند ہے وہ رحمت پسند ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رحمت ہی کی بنیاد پہ یہ دنیا چل رہی ہے. اللہ کا اصول قانون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، جو چیز اس دنیا میں سب سے زیادہ پرومیننٹ کر کے پیش کرتے ہیں وہ رحمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ آج اس دنیا میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے. بخاری کی روایت 6000 یعنی 6000، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو سم نہیں لگنے دیتی، یعنی اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رونتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ بخاری 7404. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے پاس موجود کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ لوح محفوظ. کما خلق اللہ خلق کتب فی کتابہ فہو عندہ، جو کتاب اس کے پاس ہے، اور وہ کہاں ہے؟ فوق العرشی، عرش کے اوپر، اس پہ ایک جملہ لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی. یہ ہے، اس لیے اللہ آج کافروں کو بھی پانی کے گھونٹ دے رہا ہے، اور مومنوں کو بھی دے رہا ہے، فاجروں کو بھی دے رہا ہے، فاسقوں کو بھی دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ جب آتا ہے نا اپنے بندوں پہ، تو اللہ اس کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے، اور اسی وجہ سے آج آپ اور میں جی رہے ہیں. اتنے گناہوں اور اتنی کمیوں کے باوجود باعزت طریقے سے دنیا میں انسان جیتا ہے، یہ آپ کی میری خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کبھی کسی کو تانا ملا، کر کے کیا آئے ہو؟ کبھی کسی کو کسی محفل میں اندر غیب سے آواز آئی، یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ہم سب نے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، ہم کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو آواز لگوا دے، نہیں لگاتا. غضب کے اوپر رحمت غالب ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کیسے رحمت کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری 5999. آپ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اور پوری دلائل اور روایت پوری ڈیٹیل سے موجود ہے کہ اس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، یعنی نرسنگ مدر تھی، اور وہ ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے، یعنی اس کا بچہ گم گیا. اتنے میں ایک بچہ قیدیوں میں ملا، इसने झट अपने बच्चे को पेट से लगाया और उसको दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी सल्लम भी ये मंज़र देख रहे थे। सहाबा से कहा, क्या तुम ख्याल कर सकते हो कि ये औरत अपने इस बच्चे को पकड़े और किसी आग के तनूर में फेंक दे? सहाबा ने कहा कि जब तक इसको इख्तियार दिया जाएगा ये ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि वो बच्चा धूप में निकल गया और उसके पाँव जलने लगे, तो वो माँ जब उसको मिलती है तो उसका मुंह नहीं चूमती, उसके पाँव के तलवे चुन लेती है कि मेरे बच्चे के पाँव जले। तो कहा कि ये तो इसको आग में नहीं डालेगी। उस पे फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चे पे मेहरबान हो सकती है। यकीन करें, हमने अल्लाह की रहमत को समझा ही नहीं है। और क्या सिर्फ़ अल्लाह ही रहमत करता है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी रहमत थे। कहाँ लिखा है? सही मुस्लिम 2355, 2355 अबू मूसा अलैहिश्शरी से कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे अपने कई नाम बयान किए कि मेरे बहुत सारे नाम हैं। फिर आपने फरमाया, मैं मोहम्मद भी हूँ और अहमद भी हूँ, और मैं मख्फिया भी हूँ और हाशिर भी हूँ, नबी तौबा भी हूँ और नबी रहमा भी हूँ। यानी यहाँ अल्लाह के नबी का आप नाम लिख सकते हैं, रहमत वाला नबी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल मुशरिकों के ख़िलाफ़ बददुआ कर दें किसी मौके पे कहा होगा, आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मुझे तो रहमत बना कर भेजा है। सही मुस्लिम 6613। और क्या नबी के बाद नबी के साथी भी आपस में रहम करते थे? बिल्कुल करते थे। सूरत फतह आयत 29, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर सख्त हैं लेकिन रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम वाले हैं। तो हमें भी एक दूसरे के साथ रहम वाला बनना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि रहम दिल लोगों का क्या होगा? तो लिख लीजिए कि रहम दिल लोग जन्नत में जाएंगे। कोई जन्नत में ऐसा शख्स नहीं जाएगा जिसके दिल में रहम ना हो। सही मुस्लिम की रिवायत है 7207। अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में फरमाया कि जन्नती लोग तीन किस्म के होंगे। नंबर एक, हुकूमत के साथ इंसाफ करने वाले, सदका खैरात करने वाले, तौफीक दिए हुए, यानी ये एक कैटेगरी है। हुकूमत के साथ इंसाफ करते हैं, यानी टैक्स चोरी नहीं करते और हुकूमत के रूल्स को ब्रेकअप नहीं करते, और सदका खैरात भी बहुत करते हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक दी हुई अच्छे कामों की। दूसरी किस्म वो है, वो आदमी के जो अपने तमाम रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल हो। सोचिए ज़रा, तमाम रिश्तेदार, क्या मैं इसमें आती हूँ? कोई एक तो ज़रूर होगा जिसके ऊपर गुस्सा आता रहता है, हाँ? और मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल। और तीसरा वो शख्स जो पाक दामन, पाकीज़ा खल्क वाला और अयालदार भी हो, यानी बच्चे हों, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ ना फैलाता हो। कोई ऐसी मिसाल है कि जिससे हमें मोमिनों की आपस में रहम दिली नज़र आए? तो अल्लाह के नबी ने इसकी बहुत प्यारी मिसाल दी, बुखारी 601 और मुस्लिम 2586, नोमान बिन बशीर से। कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत व मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ़ व नरम खुई में एक जैसा पाओगे कि जब इसका कोई एक टुकड़ा भी तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ़ में होता है, ऐसी कि नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। यानी मोमिनों का आपस में मामला ऐसा होना चाहिए कि एक दुखी हो तो बाकियों को भी अपना सुख सुख ना लगे। क्या बच्चों पे भी रहमत की जा सकती है? बिल्कुल करनी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 5998 और मुस्लिम 2317, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहती कि एक देहाती था, यानी बेचारा सीधा साधा शख्स होगा, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और आप उस वक़्त किसी बच्चे से प्यार कर रहे थे, हसन था या हुसैन, कोई भी होगा। खैर, उसने जब आपको बच्चे को प्यार करते, किस करते देखा, कहने लगा, अल्लाह के नबी, आप बच्चों को किस करते हैं, यानी बोसा देते हैं? हम तो इन्हें बोसा नहीं देते। यानी मैं नहीं करता बच्चों से प्यार, और बल्कि यहाँ तक आता है उसने कहा मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं तो कोई नहीं किसी को प्यार करता। तो आपने फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों से भी प्यार करना चाहिए, ये भी नरम दिली की अलामत है। ना करेंगे रहम तो क्या होगा। बुखारी 7376 और मुस्लिम 2319, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी इस पर रहम नहीं खाता। और जो रहम नहीं करेगा ना वो शकी है, बदबख्त। इसकी दलील अबू हुरैरा से कहते हैं मैंने अबुल कासिम से सुना। कौन थे अबुल कासिम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि रहमत नहीं निकाल ली जाती मगर किसी के दिल से जो कि शकीउल कल्ब हो, यानी किसी के दिल से भी अल्लाह रहमत नहीं निकालता लेकिन बदबख्त के दिल से निकाल लेता है। तिर्मिज़ी 1923 था। और याद रखिए कि रहमत जब अल्लाह से मांगे ना तो थोड़ी ना मांगे, ज़्यादा मांगे। बुखारी की रिवायत है 6010, हज़रत अबू हुरैरा ही रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी नमाज़ के लिए खड़े हुए, हम भी आपके साथ खड़े हो गए। जो ही नमाज़ पढ़ के फारिग हुए एक देहाती आया और दुआ करने लगा ए अल्लाह मुझ पर रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और हमारे साथ किसी और पर रहम ना करना। यानी उसने डिस्टिंग्विश कर लिया वो जिसको आप भी झूठ बोलते हैं ओनली फॉर यू, और चार कार्ड खरीदते हैं ओनली फॉर यू के, तीन से तो झूठ बोलेंगे ना, एक को सच्चा भी दे दिया अगर। तो कहने का बस मेरे पे रहमत और आप पे। जब अल्लाह के नबी सल्लम ने देखा उसकी तरफ मुंह फेरा तो आपने फरमाया तुमने एक वसी चीज़ को तंग कर दिया। यानी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी थी तो तुमने उसको छोटा क्यों कर दिया। मुराद क्या है कि तुम अल्लाह से सब के लिए रहमत मांगो। हकीकत यह है कि रहमत के ऊपर ये कायनात खड़ी है। अगर आप मैं एक दूसरे के साथ रहमत नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी को नेकी का हुक्म नहीं देंगे। इसकी दलील सूरत बलद आयत 17, व तवासो बे सब्री व तवासो बिल मरहमा। एक दूसरे को सब्र और एक दूसरे को रहम की तलकीन करते रहे, यानी हक के रास्ते में व तवासो बिल हक की व तवासो बिल सब्र। हक के रास्ते में जब तक सब्र नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लोगों के लिए रहमत कैसे थी कि आपने लोगों को आग से बचाने का एहतमाम किया। आप कहते हैं लोगों तुम आग के घड़े के किनारे खड़े थे और मैं आया और तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर, पीछे से पकड़ पकड़ कर तुम्हें मैंने उस घड़े के पास से हटाया। तो क्या पता चला कि जो ज़मीन पर रहम करेंगे आसमान वाला उन पर रहम करेगा। एक शेर भी है ना, करो तुम रहम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। यह असल में एक हदीस है अबू दाऊद की रिवायत है 4941। अब्दुल्ला बिन अमर इसके रावी हैं, कहते हैं अर्राहिमून यरहमुहुमुर्रहमान इरहमू अहलल अर्दी यरहमकुम मन फिस समाई। रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है, ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और दूसरी बात एक नोट कीजिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ 3 सेकंड तक सोच लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अल्लाह का सबसे बड़ा रहम क्या है? यानी आप सोच सकते हैं कि दुनिया बनाई, जन्नत बनाई, इस्लाम दिया, हमें इंसान बना दिया, सबसे बड़ा रहम क्या है जी? कैसे, कोई दलील? अर्रहमान अल्लमल कुरान। इस कायनात पे अल्लाह का सबसे बड़ा रहम ये कुरान है और वो कुरान आपके हाथों में है। कितने खुशकिस्मत हैं आप। और अगर कुरान पढ़ के हमारे अंदर रहम ना आए, हमारे दिल सख्त हैं, कह लीजिए कि अपने मुलाजमीन के साथ, खादिमाओं के साथ और मज़दूरों के साथ और बाज़ दफ़ा तो अपने साथ काम करने वालों के साथ भी रहम नहीं करते, तो फिर सोचिए कि ये कुरान हमने क्या पढ़ लिया। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम कितना था कि अगर नमाज़ पढ़ते और पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो आप नमाज़ मुख्तसिर करते। बुखारी की रिवायत है 708, किताबुल अजान, अनस इसके रावी हैं, का मा सल्लई तो वरा इमाम कत्तुन अखफ सलातन वला अतम मिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी सल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी के सामने नहीं कभी पढ़ी, कि अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि कहीं इसकी माँ परेशानी में मुब्तला ना हो, नमाज को मुख्तसिर कर देते। तो आप ज़रा सपने ऊपर लीजिए, मेरे दिल में कितना रहम है। देखिए, अब यहाँ फिर इम्प्लीमेंटेशन चंद मिनट की बात कर लेते हैं इसके ऊपर। रहम खा कर बच्चे को नमाज के लिए ना उठाएं, रहम खा कर आप किसी का दिल ना तोड़ें और गुनाह की दावत कबूल कर लें, ये रहम नहीं है। हम मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हैं। जब तक हमारा अपना इल्म पुख्ता नहीं होता ना कुरान सुन्नत का, हमारा अपना लेवल भी सेट नहीं होता। अभी तक हम ऐसे हैं जैसे किसी गोल दायरे में जब कोई घूम रहा होता है ना, हर लम्हा दायरा क्या है, एवरी पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, एवरी पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट। जब एक इंसान इल्म की तरफ आता है ख़ास तौर पे, तो वो दायरे पे खड़ा होता है। जैसे एक माँ थी तो कहने लगी कि बच्ची की शादी करनी है, रिश्ता नहीं आ रहा, ये है वो है, जो हालात है, और उनकी बच्ची ने नया नया कुरान शुरू किया था। मैंने उन्हें यही मिसाल दी थी, मैंने कहा थोड़ा सब्र कर ले, इस वक्त आपकी बच्ची कुरान से जुड़ी है, अभी ये एक दायरे की कैफियत में, अभी इसकी अपनी सोच को पुख्ता होने दें। क्योंकि अगर आपने इसका रिश्ता कर दिया, अभी कुछ अरसे बाद इसकी सोच बदलेगी, इसको वो रिश्ता अच्छा नहीं लगेगा। जिनसे आप करेंगे इसका रिश्ता तय, कल इसके अंदर कोई ऐसी अमली तब्दीली आ गई तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे। और जो भी आपने करना है थोड़ा सब्र कीजिए, इसकी सोच पुख्ता होने दें। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि जब हम दीन का कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं, अभी कच्चा पक्का है, बिलीफ में कच्चा पक्का है, बहुत सारे लोग पूरा कुरान पढ़ने के बावजूद भी अभी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होते। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है। तो अल्लाह से ये कहा करें कि अल्लाह, अब चूंकि मैं चेंज हो रही हूँ, चूंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, चूंकि मैं अपने आप को बदल रही हूँ, तो फिर आप मुझे बेहतरीन अंदाज से ढाल लें। और वही बात कि अल्लाह मुझे ऐसा बना लें कि क़यामत के दिन आप जब मुझे देखें तो आपको मेरे ऊपर प्यार आ जाए। देखिए, लोगों का प्यार लेने की हर मुमकिन कोशिश कर ही ली है ना, मिल भी गया सारी दुनिया का प्यार तो क्या मिला। सर का दर्द तो कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई तकलीफ आ जाए दूर तो कोई कर नहीं सकता। तो अब अल्लाह के प्यारे बनना है। अब हमने दुनिया को खुश कर दिया जितना करना था, जिसको कहना चाहिए कि अपने लिए इतना सख्त टारगेट ना ले आप, इट्स अनअचीवेबल टारगेट टू प्लीज पीपल। अपने आप को खुश करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप आज अपने आप को खुश करें, कल आपका नफ्स आपसे इससे भी बड़ी चीज़ मांगेगा। आप उसकी वो मनपसंद करें दूसरी होगी। हजरत आयशा कहती हैं, जो चाहे खाओ, यानी जो खाने को दिल चाहे वो खाना, ये भी इसराफ है। नहीं समझे? आप कहेंगे पकोड़े खाते हैं, पकोड़े बना लें, फिर आप कहेंगे साथ अब सोडा पीना है, सोडा पियेंगे, तो उसके बाद चाय पियेंगे, चाय के बाद आपको छालियाँ चाहिए होगी। एक ख्वाहिश के अंदर से दूसरी ख्वाहिश निकलती जाएगी। अब आपकी मेरी ज़िंदगी और हमारी उम्र का बाकी हिस्सा अल्लाह चाहा, क्यों परेशान होते हैं? हमने क्या दिया है अभी? हमने इस रास्ते में इल्म को दिया क्या है? हमने इस्लाम को तो अभी देना शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म मिलता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दिल में ख्वाहिशात आती हैं, कुछ करने का शौक़ है। एक जगह एक दर्स था तो सिस्टर्स थी, मैंने जाते ही एक सवाल किया कि सिस्टर्स ये बताइए कि आपने सुबह से इस्लाम के लिए क्या किया। मेरा क्वेश्चन कुछ इस किस्म का था। तो पहले तो वो ज़रा सा परेशान हुई, फिर एक कहने लगी मैं उठी तो मैंने तहज्जुद पढ़ी, दूसरी ने कहा दुआएं पढ़ी, तीसरी ने कहा अज़कार किए, जो कुछ किया। एक दो की बात सुन के मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा माजरत, ये तो आपने अपने लिए किया। अब वो ज़रा सी टोंकी, मैंने कहा आपने नमाज़ पढ़ी, ना पढ़ेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम है। आपने दुआएं पढ़ी, आपका सिक्योरिटी लेवल है, इट्स गुड। आपने चाश्त पढ़ ली तो आपके माशाल्लाह घुटने ठीक रहेंगे, बिलफर्ज। तो सिस्टर्स, ये तो आपने अपने लिए किया। आप कहती क्या ये कोई फ़र्क चीज़ होती है? यदि आप देखिए, सोचिए ज़रा, क्या ये फ़र्क है कि अपने लिए कुछ अच्छा करना या इस्लाम के लिए? फिर मैंने उनको थोड़ा सा यही बताया कि अभी तक तो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, इस्लाम को क्या दिया। देखिए, इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम में से हर एक बामल हो जाता है तो इस्लाम को हमारी ज़रूरत ही नहीं रहती कुछ हम उसके लिए करें, लेकिन इस्लाम के लिए कुछ करना, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, लोग मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं, किसी को इस्लाम का रास्ता दिखा दें, किसी इंटरेस्टेड शख्स को इस्लाम की दावा दे दें, ये इस्लाम के लिए है ना। किसी जगह जाइए इस्लाम का झंडा लगा दें, किसी मुसलमान की मदद कर दें, अभी तक तो हम ज़ाती पर्सनल नेकियों में से नहीं निकल पा रहे। तो क्या आपको नहीं दिल करता कि आपको कोई जॉब दे? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, आपको अगर एक चॉइस मिले कि आपको इस शहर की एक छोटी सी फर्म, वो सामने कोई छोटा सा ऑफिस उनका हो सकता है, उधर से जॉब ऑफर होती है, और वो आपको पे जितनी मर्जी दे दें, जो भी लेवल है वो उससे कम तो देंगे भी नहीं, बट दे आर वेरी अननोन पीपल, और वहाँ जो काम भी आप करेंगी वो कोई आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिकॉज आपको करना है तो करना। इसके बरक्स अगर आपको एक जॉब ऑफर हो जाती है, मिसाल दे देती यूएनओ से, जिसको सभी बड़ा कहते होंगे, और इससे बड़ी क्या चीज़ है, कोई बड़ी कंपनी का नाम ले ले, आरामको कंपनी में आपके हस्बैंड को जॉब ऑफर होती, आप किसकी जॉब ऑफर कबूल करेंगे? लेकिन मिसाल है कि आपको यूएसए के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऑफर आ जाए, क्या कबूल करेंगे? कौन सी जॉब? फिर उसमें मनी भी देखेंगे कि ज्यादा है, ये वो छोटा सा ऑफिस वाला आपको दे रहा है जो बड़ा, किसकी लेंगे गुलामी, किसकी जॉब लेंगे? देखिए फितरी बात है, बड़ी जॉब बड़ा का, बड़ा नाम। आप अगर दीन से भी कहते हैं तो अगर आपका बेटा जो है वो मुल्क राह में पढ़ाता हो, इमामत करे, या रॉजवेल की मस्जिद में हो, आप कौन सी इमामत को पसंद करेंगे? सऊदी अरब की किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लेंगे ना। देखिए अब यहाँ समझिए कि छोटे की जॉब के पैसे कितने क्यों ना मिल जाएं, लेकिन स्टेटस नहीं होता, और बड़ी कंपनी में नाम होता है। अब आप सोचिए सारी चीज़ों को सुनकर जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, कि आपको एक ऑफर मिलती है कि आप किसी बड़े की मुलाजमत इख्तियार कर लें, किसी छोटे की छोड़कर, तो किसकी लेंगे आप? ये कहेंगे नहीं, हम छोटे की कर ही रहे हैं बहुत सारे। बस ये कह लीजिए ये सफ़र आपको ये सिखाता है। मैं एक सुन रही थी, छोटा सा क्लिप था, कि किसी ने कहा कि आपने अपने इस प्रोफेशन या इस्लाम के लिए, या जो वो एक मुबल्लिग हैं बहुत अच्छे, अल्लाह जन्नत दे, चले गए दुनिया से, तो वो अपने बारे में सुना रहे थे कि लोग कहते हैं कि एक दफ़ा कुछ छोड़ना पड़ता है, एक दफ़ा हिजरत करनी पड़ती है, ये तो कदम कदम हिजरतों का सफ़र है, ये तो कदम कदम कुर्बानियों का सफ़र है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने इसके लिए अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा, मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हूँ उसके लिए, नहीं हूँ। आपको पता है डॉक्टर इसरार साहब की बात कर रही हूँ मैं, ही इज़ बाय प्रोफेशन अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन जब उनका पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ तो उनको फील हुआ कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन रूहानी डॉक्टर बनना है। ही इज़ वन एग्जाम्पल, उनका ये क्लिप मैंने देखा था चंद दिन पहले, कहीं देखा है। उन्होंने कहा लोग सोचते हैं कि आपने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा है, फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ इवेंट्स गिनवाए कि मैंने क्या क्या हिजरतें की हैं सिर्फ अपने इस काम, पढ़ने पढ़ाने के लिए। फिर तौफीक चौधरी, नाम सुना है आपने उनका, ही इज़ फ्रॉम बंगाल, बंगाली हैं और ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत कामयाब स्पीकर हैं, आई लाइक हिम रियली, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल, कभी आपको सुनने का मौका मिले इंग्लिश में तो ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। वो अपना सुनाते हैं कि ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, और वो सब गरीब थे पेरेंट्स, जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं ना आना आना जोड़ के बच्चों को पढ़ाना, कहते हैं मेरा बाप मेरी माँ नजरें लगाए बैठे हुए थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और कब ये सारा रिटर्न वापस आए जो मेरे पे उन्होंने पढ़ाई पे लगाया। उन्हीं दिनों में इनको किसी तरफ से कोई ऐसा रिलीजियस लीडर मिला जो उसको सुनने लगे, करने कराने लगे, किस्सा मुख्तसर, वो रो पड़े। ये मैंने उनका लाइव सुना हुआ है, बर्मिंगम में शायद आए थे, यूके में थे हम उन दिनों में, तो वहाँ उन्होंने ये अपनी स्टोरी सुना, ही वॉज क्राइंग, कहते हैं कि मैं अपना जिस बात पे क़यामत के दिन अपने आप को महसूस करूँ कि द सबसे बड़ा गम और तकलीफ़ जो मैंने अपने पेरेंट्स को दी है, तो वो दिन था जिससे मैंने अपने बाप को माँ को कहा कि आई एम डिसकंटिन्यूइंग मेडिकल पर लाइफ, जो भी अभी चल रहा था, अभी उनका शुरू ही था, पढ़ चुके थे, अभी जॉब नहीं की या कुछ भी, तो कहते हैं कि मैंने उसके बाद इरादा किया कि अब ये छोड़ के मैं सऊदी अरब पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया था, मैं अगर अपने दिल पे दुख महसूस करूँ तो मैं ना देता जी उनको, लेकिन मुझे फील हुआ कि ये मेरा काम नहीं है, मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ। फिर इसी तरह डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब का नाम आपने सुना होगा, कितने कामयाब किस्म के वो आप देखिए अपने दौर के शख्स थे, कारोबारी सब थे, लेकिन सब ने जब इल्म आ जाता है ना, देन योर विजन विल बी वेरी ब्राइट। अंधेरे में तो सांप और रस्सी का फर्क नहीं पता चलता, वो करने दीजिए सबको। अब इस वक्त इस लहज पे अगर आप, मैं आपके ऊपर बात करती हूँ, सीधी बात करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह एक कोर्स करके आ गए, अब अगला कोर्स आ रहा है, इज़ इट पॉसिबल 100% कि आपके लिए ज़रूरत हो, आपके मुताबिक टेलर मेड कोर्स हो? कोर्स तो नहीं होते ना, फिर वो सबके साथ तो नहीं आप चलेंगे, वो तो ट्यूटरिंग होती है, आप अपनी मर्जी से ट्यूटर को हायर करें, टाइम दें, पैसे लें, करें, लेकिन जहाँ भी इज्तमाहियत होगी, फ्लाइट का टाइम क्या 100% लोगों को सूट करता है? हमने सिर्फ इसलिए एक फ्लाइट छोड़ी है कि वो एग्जैक्ट फजर की नमाज के वक्त पे थी और ठीक उससे 40 मिनट बाद अली ले ली है, हालांकि वो कन्वीनियंट थी, वो सस्ती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जहाज में जा रहे होंगे और उसी वक्त तो टाइम शुरू होगा, पहले नहीं पढ़ेंगे। आप ये क्यों ले ली कि जहाज में जाने से पहले पढ़ के फिर बैठेंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी, कन्वीनियंस ही मिशन ही होती। ये सोचिए अब इस वक्त आपका मेरा लेवल ये है, वट कैन ए लीव फॉर इस्लाम, देखिए छोड़ता कुछ नहीं है, ये मेरे से लिख ले, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए। आप दीन के लिए कोई चीज़ अगर वक्ती तौर पे पीछे भी डालते हैं ना, वो कोई भी हो सकती है, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो आराम, नींद, सेहत, बच्चे, घर, जॉब, कुछ भी, ये अल्लाह रखेगा नहीं। अल्लाह बहुत जीरो लगा के वापस करता है आपको, अगर इसको किसी एंगल में भी ले लें। ये सिर्फ एक साइड की बात आ गई है कि ये आप और मैं जो पढ़ने बैठे हुए हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको मुझे अपने ऊपर रहम आ रहा है या हम दुखी हो गए। शुक्र करें कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे ये मौका तो दिया। हम देंगे अपने घर अल्लाह के रास्ते में, हम देंगे अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह। सबसे अहम जो बात मैंने 20 बार बोली, वो मैं जुमले बोल ही नहीं सकी आपके साथ, बाद में ख्याल आया क्योंकि वो दिमाग में घड़ी थी कि जब हिजरत करके जा रहे थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप ये तो पढ़ चुके ना, अमीर तरीन लोगों में से थे, और जब निकल रहे थे वहां से तो बीवी, बच्चा और कुछ जमा माल था, ये तीन चीजें थी इनके पास कि चले जा रहे हैं दूसरे शहर में, काम आ देंगे। थोड़ी सी अगर आगे गए, ससुराल वाले आ गए, कहने लगे किधर जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं। कहने लगे ये लड़की वापस करो, हमने अपनी बेटी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इसको दर दर लेके फिरो। ससुराल वालों ने इनकी बीवी और जो उनकी बेटी होगी उसका मुतालबा किया, जबरदस्ती इनकी बीवी ले ली। कहा ठीक है आपकी खुशी, ले लीजिए। अभी चंद कदम आगे गए तो अपने ही माँ बाप आ गए, कहने लगे ये बच्चा ये हमारी नस्ल है, इनका बेटा, वो अपनी नस्ल समझ कर कहने लगे ये बच्चा हमारा पोता है, वापस करके जाओ। वो बच्चा भी दे दिया। हमें तो नहीं ये समझ आएंगी बातें, सॉरी, आप तो केस कर देंगे, इतनी संगदिली, इतना दिल खाली और इतने ठंडे और इतने इनके खून सफेद हो गए। ये नहीं है, ये आजमाइश होती है कि अल्लाह के लिए दे क्या सकते हैं। वो भी दे दिया, फिर निकले और जब आए तो देखा सामने अपने भाई खड़े हैं, कहने लगे ये माल मिल के कमाया है, सांझा था, हमारी शराकत है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? मुराद उनका पैसा नहीं तो कहते थे रोकना इसको। ससुराल देखे ना, जो बीवी को ले गए इनकी, क्या वो अपनी बेटी को घर बिठाना चाहते थे? ये पीयर प्रेशर होता है, नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ये करना है, और वो पोता लेके उन्होंने क्या करना था? मुराद ये था कि वैसे नहीं रुक रहा तो ये बच्चा देकर रुक जाएगा, हम तो रुक जाते हैं। और वो माल का टोकरा जो भी पोटली थी भाइयों को दी। वल्लाही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो कहा अल्लाह के नबी सिर्फ तंद के कपड़े लेकर आए हो, और भी एक सहाबी है उनके जिस्म पे तो कपड़े भी नहीं थे। अल्लाह के नबी अपनी जगह से उठते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं कद रब हल भई, कद रब हल भई, बेशक तेरी ये तिजारत तुझे फ़ायदा देगी, यानी तूने नफ़े का सौदा किया। और वही फिर आगे जो कहानी सुनी कि मवाखाते मदीना हुई और भाई ने आधी जायदाद पेश कर दी, कहते शुक्र है देखा उधर छोड़ा था इधर मिल गया। का नी दल्लू नीला सोके, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, और पनीर और घी का काम किया। जब वक्त गुजर गया तो अल्लाह के नबी को मिले, कहा सुनाओ अब्दुर्रहमान क्या हाल है? ठीक है, इस जगह अरब लोग कुछ पीला सा जाफरानी रंग खुशबू वाला लगाते थे जो इस बात की निशानी थी कि न्यूली वेड है, हर कल्चर में कुछ होता है। अल्लाह के नबी ने पीला रंग देखा इनके जिस कपड़े पे, कहा कि अब्दुर्रहमान क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा हम होते, अच्छा हमें बुलाया ही नहीं, बताया ही नहीं, हमारे बगैर, हाँ जी अब ऐसे ही होना है, खून सफ़ेद हो गया, दीन जो पढ़ने लग गए, कुरान पढ़ने लग गए। आप खुश हुए? आपने कहा अउलिम बिशातिन, वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी का करना। तो आप देखिए ये वेवलेंथ हमें समझ आती है कि क्या अब्दुर्रहमान ने सब कुछ हिजरत मदीना के मौके पे दिया तो कंगाल होके मरे? उनके विरसे की इतनी लंबी डिटेल्स आपने किसी सहाबी के विरसे की नहीं पढ़ी, जो कल आपको इनकी सुना दी मैंने, जो इनका विरसा है वो देखिए कितना बड़ा है। तो याद रखिए आप और मैं भी नहीं किसी का रखते, अपनी हैसियत से बंदा ज़रूर कुछ दे देता है, लेकिन क्या अल्लाह रखेगा? अल्लाह नहीं रखता। सिर्फ करना क्या है आपको मुझे, इसके ऊपर अल्लाह से सौदा करके खुशियाँ मनाएं। फस्तबशिरु बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, सूरत तौबा में अल्लाह आपको कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना। तो आपका अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम, देखिए अब ये रहम पे इतनी बात हो गई है, वल्लाही इस पे मेरी बात ना मानिए, डोंट लिसन टू मी, आप अपने एडमिन की भी बात ना माने, आपके जो इधर कोऑर्डिनेटर हैं उनकी भी ना माने, आप अपने दिल को रख कर पूछें कि आपका इस वक्त अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम क्या है, कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप इस दीन को सीखने के बाद इसको मज़ीद स्पेशलाइज कीजिए। इसी में एक वक्त आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। कौन सा फील्ड है ज़िंदगी का जो इस्लाम से हटावे, मेरा क्वेश्चन है आपसे। बिलफर्ज आप डॉक्टर हैं, क्वेश्चन ये है क्या मेडिकल प्रोफेशन में रह कर अच्छे काम नहीं हम कर सकते? बस अच्छे काम करना सीख लें, ये मेडिकल प्रोफेशन आपकी जन्नत का रास्ता बन जाएगा। मैंने सुनाई थी दरसों में, आपने सुनी होगी, एक बच्चे से मैंने सफ़र में पूछा था, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो आधा डॉक्टर आधा इमाम। मैंने कहा चलो ये नस्ल आधे तक तो आ गई है, अगली पूरे पे आ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप अपना पूरा भी डॉक्टर बन सकते हो, पूरे इमाम भी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? उनको तो ये समझ नहीं आती ना। फिर मैंने उसको बताया जो आप सुन चुके होंगे। तो यकीन कीजिए पूरे बन के देखें, आपकी मर्जी है आप जन्नत के पहले दर्जे में जाना चाहते हैं या आप 100वें पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक फील्ड ले ली, आप उसके बाद स्पेशलाइज करना ना करना आपकी मर्जी है, लाइक रहा हाफिद्दीन। और एक सवाल कीजिए, जो जो काम आप कर रहे हैं वो आपके अलावा हो सकते हैं कि नहीं? कोई और कर सकता है? और कर सकता है ना, तो आप वो कीजिए जो कोई और नहीं अब कर सकता। आज अगर सिर्फ हम मुस्लिम इस चीज़ पे गौर कर लें, तो मेरा यकीन है इस बात पे कि उम्मत मुस्लिमा में खैर आएगी, बिल्कुल आने वाली है। मैं ऐसी लोगों को जानती हूँ, यकीन करें कि अपने काम की जगह किसी और को रखा, पैसे उसको देने लग गए। यानी क्या क्या काम है ये, तो अब आप और मैं छोड़ ही देना कि इस रास्ते में आपका मेरा क्या है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने ऊपर रहम करने वाला बना दे, जितना रहम करेंगे उतना रहम मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अल्लाह के वादे सच्चे। मैं तो दोनों हाथ खड़े करके आपको कह सकती हूँ कि मन अहसन मिन अल्लाह ही कीला व मन अहसन मिन अल्लाह ही हदीसा। अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं है। करना क्या है कि आपने सिर्फ अपने मन को मारना है, बाकी आपके बगैर ये भी हो जाएगा। आखिरी बात कह दूँ कड़वी सी, आप नहीं भी होंगे तो ये भी हो जाएगा जिसकी आपको दावत दी जा रही है, पर आप नहीं होंगे। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। मुझे याद है एक न्यूली बच्ची जिसकी शादी हुई, मेडिकल कर चुकी थी, फिर उसके बाद जो शुरू में क्या 3 साल हाउस जॉब कुछ भी, फिर उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेप पे जो करते हैं रेजिडेंसी, एक जिसमें उसको दूसरे शहर में जाके रहना पड़ा। ये यूरोप की बात है, यहाँ की भी नहीं पाकिस्तान की भी नहीं है। यकीन कीजिए कि शादी के बाद वो लड़की उससे हटके कोई 2-4 घंटे दूर के किसी छोटे से, उन्होंने उसको गांव कह लीजिए, उसमें भेजा कि आपकी रेजिडेंसी में आपको दूसरी ही जगह भेजना है। ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे भेजते हैं। और वो रही, ससुराल ने कुछ नहीं कहा, मियाँ साहब ने कुछ नहीं कहा। वरना हमारे यहाँ तो न्यूली वेड तो बड़ी बेचारी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है चलती कैसे है, बोलती कैसे है, उठती कैसे है। तो दुनिया के लिए तो लोग सारा कुछ कबूल करते हैं। तो अगर कोई आपको कहे ना कि अब आप कहाँ चल दी, तो क्या अब तो असल जॉब मिलने के दिन आने वाले हैं, अब तो प्रैक्टिस चलनी, इसके बाद तो फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और ये हमेशा नहीं रहता वक्त, ये थोड़ा सा वक्त होता है कुर्बानियों का, उसके बाद सिले शुरू हो जाते हैं।